नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोए तवसाहूरं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम् आत्मा ज्ञानम् स्वयं ज्ञानम् ज्ञानादन्यत्करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानाम् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निमित्त उपादान की चर्चा में पान नंबर 31 पर आए थे हम। नौवां प्रश्न हमारा अभी आज चलेगा। 8 प्रश्न तक हमने पढ़ा है, उसमें कितना पेज है? 39। देखो प्रश्न पढ़ते हैं। कल बात आई थी कि कुछ लोग तो ज्ञानियों के समागम में वर्षों से रह रहे हैं, फिर भी उनको उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तो उसी आधार से अब अगला प्रश्न उठाते हैं कि यदि ज्ञानियों के समागम में भी किसी को कुछ उपलब्ध नहीं हुआ, तो इसका अर्थ तो यह नहीं है कि हमें सत्संगति नहीं करनी चाहिए। यानी किसी को ज्ञानी की संगति में बहुत साल बिताने के बाद भी, बहुत सालों से शास्त्र स्वाध्याय करने पर भी, जिसके हाथ कुछ नहीं लगा, यानी जिसको तत्वज्ञान नहीं हुआ, जिसको समय दर्शन नहीं हुआ, तो कहते कि हमें सत्संगति नहीं करना चाहिए, ऐसा तो अर्थ नहीं होता है। उत्तर देते, नहीं, यह अर्थ तो कदापि नहीं है। सत्समागम में रहना तो जीवन का सौभाग्य है, क्योंकि सत्संगति की रुचि न केवल हमारे उज्जवल भविष्य की सूचक है, अपितु वर्तमान के निर्मल परिणामों को भी बताती है। यानी वर्तमान में दुनियादारी के अन्य झंझट छोड़कर, टीवी या अन्य विकता को छोड़कर सत्संगति में रहते हैं, उसकी रुचि है, वो क्या बताती है कि हाँ यह जीव भविष्य में अवश्य ही इसी ओर जाने वाला है, या वर्तमान में भी उसके इतने निर्मल परिणाम है, विशुद्ध परिणाम है, इसको बताते हैं। यदि हमारे परिणाम वर्तमान में ही विकृत होते तो हम असत लोगों के समागम में ही रहना पसंद करते। अन्य जो मित्र, जो अपने फ्रेंड सर्कल होते हैं, कि जो बहुत मध्यम अंश में भी लगे हैं, या कोई मौज मस्ती में ही मजा यानी उसी में मशगूल है, पिक्चर देखे या ताश खेले, इसमें जो मशगूल है, उनकी रुचि छोड़कर हम यहाँ आए हैं, तो ये हमारी निर्मल परिणामों के द्योतक है। सत्समागम अच्छी बात होने पर भी सब कुछ सत्समागम से ही हो जाने वाला नहीं है, ये महत्व की बात है। सत्समागम है तो अच्छी बात, परंतु सत्समागम किया बस अभी हो गए, हम वहीं पर संतुष्ट हो जाए, हमारा अभी कर्तव्य हो गया, हमने ज्ञानियों की संगति कर ली, हम उनके प्रवचन में जाते हैं, बस अभी हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो उतने मात्र से ही सब कुछ नहीं होने वाला। सत्समागम तो निमित्त मात्र है, और अभी तक हमने यही पढ़ा है कि निमित्त कार्य में कुछ नहीं करेगा। जब हम स्वयं अपने समय दर्शन रूप परिणमित हो गए, तो सत्समागम को वहाँ निमित्त कहने में आएगा। जब तक हमारे अंतर की तैयारी नहीं होगी, उपादानगत योग्यता का परिपास नहीं होगा, दृष्टि स्वभाव सन्मुख नहीं होगी, तब तक यानी जब तक हम स्वभाव सन्मुख यानी जिसका निर्णय किया है ऐसे स्वभाव के सम्मुख होकर उसी को जानते रहेंगे, तो ही समय दर्शन हो। उसके बिना अकेला सत्समागम किया, अकेले स्वाध्याय पढ़े, अकेले परीक्षा दी, अकेले निमित्त उपादान पढ़ाया, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो अपने उपयोग को स्व सम्मुख करने की कला, एक कला कह सकते हैं, मगर ये तो सीधा सहज है ना, कि जिसके बारे में हम सुनते हैं, जिसकी इतनी चर्चा करते हैं, जितनी महिमा इतनी हमें भाषित होती है, तो उसको देखने का मन नहीं होता। जिस शुद्धात्मा की हम बार बार चर्चा करते हैं, वह मैं स्वयं शुद्धात्मा हूँ तो मैं इसे जानू तो ऐसे क्यों नहीं रुचि उत्पन्न होती। तो जब ऐसी रुचि उत्पन्न होकर अपनी ओर उपयोग लगाएगा तो वह सम्मुख होगा, तभी आत्म कल्याण। उसी के उसकी अभी महिमा नहीं आई। दुनिया में जिस चीज की महिमा आती है वहाँ अपनी रुचि भी काम करती है। जब तक पैसे की महिमा है तो उसी में रुचि लगी रहती है, व्यापार धंधे में ही रुचि लगती है। जब इस बात की शुद्धात्मा की महिमा आती है कि ये कैसा है आत्मा का स्वरूप, कि अनंत गुणात्मक ऐसा मैं हूँ, स्वयं से हूँ, मुझे किसी ने बनाया नहीं है और परिणमन करने की भी शक्ति मुझमें ही है, अन्य कोई मुझे पलटा नहीं सकता या मेरा कुछ कर नहीं सकता है, मैं किसी अन्य का नहीं कर सकता, कि अनंत गुणात्मक ऐसा मैं हूँ, तो अनंत गुणों का स्वरूप ख्याल में आता है। ज्ञान के अकेले का भी स्वरूप ख्याल में आएगा तो ज्ञान कैसा है कि अपने में ही रहकर अपने को पूरी तरह से जाने ही जाने, उस अपने ज्ञान में ही पूरी दुनिया सारे अनंतानंत द्रव्य उसके पर्याय सारी जानने में आ जाए, ये मेरी ज्ञान की सामर्थ्य है। ऐसे ज्ञान का जब महिमा आती है, अरे ऐसा ज्ञान है, एक समय में इतना सारा जाने, ऐसी ज्ञान की कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी मुझमें अभी है विद्यमान, द्रव्य शक्ति है ना मुझे, तो ऐसा मैं हूँ, ऐसा जब अचम्मा लगता है उसकी ओर महिमा आती है तो अपने को जानने की रुचि बढ़ती है। ऐसा होता है कि अरे मुझको जानना ही है, जो कार्य मैंने आज तक नहीं किया है। ज्ञानी के किसी एक वाक्य की ऐसी महिमा अंदर आती है कि उस पर विचार करते करते, या वितरकता की महिमा आती है सर्वज्ञता की, तो सर्वज्ञ का स्वरूप मन में निश्चित करते करते वो विचार कहीं छूट जाते हैं, और ऐसा जबरदस्ती नहीं करना पड़ता, नहीं अभी मुझको जाना है, ये तो सारा निर्णय करने में प्राथमिक स्टेज में हो जाता है। और जब ऐसे सर्वज्ञता या क्रमबद्ध पर्याय कोई भी ऐसे विषय पर अपना इतना उपयोग, उसकी महिमा आ जाती है तो उपयोग अपने को पकड़ लेता है, सहज होता है, उसमें करने धरने की कोई बात नहीं होती और पता ही नहीं चलता कि अरे कभी छूट गया कभी आत्मानुभूति हुई, ये आत्मानुभूति हुई उसका पता चलता है, परंतु अरे विकल्प छोड़ने हैं वगैरह ऐसा कुछ नहीं, वहाँ जबरदस्ती कुछ नहीं होता, सहज ही विकल्प बंद होते होते बंद पड़ जाते हैं और उपयोग आत्मा को पकड़ लेता है तो सहज ही वहाँ आत्मानुभूति हो जाती है। तो निर्णय जो है तत्व का निर्णय, तत्व का निर्णय करते करते ही रुचि बढ़ जाती है, क्योंकि सही बात ख्याल में आती है तो उसकी आत्मा की अपनी मैं स्वयं सबसे महान हूँ ऐसा यदि भाषित हो तो उपयोग अपनी ओर चला जाएगा। तो शास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें तो अपनी बात की है, अपने शुद्धात्मा का स्वरूप बताया है, तो हम तो पर्याय जितना ही अपने को समझते हैं तो किसी अन्य की पर्याय देख देख कर उसकी तरफ हो जाती है। तो जब अपना स्वरूप ख्याल में आएगा सच्ची तो रुचि भी हो जाएगी, उसको भी ऐसा नहीं अभी मुझे रुचि करनी, रुचि होती ही अपने आप, वो भी अपने आप होती है, जैसे उपयोग वहां जाता है जहाँ रुचि है, वैसे रुचि भी वहीं पर होती है जिसकी महिमा हमें भाषित होती है। तो महिमा कैसी भाषित होती है, तो किसी चीज का पता चले तो महिमा भाषित होती है। पांच तत्वों की बात जो आती है ना, कि मैं कौन हूँ, तो ये बाकी अजीब तत्व क्या है, आश्रय जो है राग द्वेष के परिणाम अपने में होते हुए खबर तो पड़ती है ना, तो वो किसको खबर पड़ती है, अपने को या बाजू वाले को, अपने को पड़ती है, तो किसने जाना, नहीं तो जानने वाला मैं अलग हूँ, ये राग द्वेष आए और चले गए तो भी जाना, आए तो भी जाना, तो मैं तो कॉन्स्टेंट हूँ ना, जानने वाला मैं तो हमेशा वाला हूँ और ये आते जाते हैं और वो दुखरूप लगते कि सुखरूप लगते, दुखरूप है। तो ऐसे ऐसे उसके बारे में हे उपादान वगैरह, हे उपादे ऐसी, उसमें बराबर सात तत्वों की बार बार उसका स्वरूप जानकर, अकेला जानकर यानी बोलकर नहीं, उसकी परिभाषाएं रटाकर नहीं, अपने में क्या सच लगता है ऐसा कि मैं जानने वाला हूँ। ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, बाहर के पदार्थों से आ रहा है कि अंदर से मेरे में से आ रहा है? तो इसका निर्णय स्वयं की ओर देख कर करना है, अकेले शास्त्र में बताए इसलिए नहीं। अपने को क्या लगता है, अपने को राग में मजा आ रहा है तो बच्चे के प्रति राग में तो मजा आ रहा है, तो अपने को वो दुखरूप भाषित होता है, अरे उसमें भी कुछ टेंशन है, उसमें भी कुछ आकुलता होती है, शुभ भाव में भी कुछ आकुलता ख्याल में आती है कि नहीं आती, ऐसे अपने में ही उसकी उसकी छनावट करना, उसके एनालिसिस करते रहना। तो ये सात तत्वों का स्वरूप जो शास्त्र में बताया है वैसे ही अपने को भाषित होता है कि नहीं, ये सारा ही भाव भाषण के ऊपर निर्भर है। अकेले शब्दों को नहीं रखना है, शब्दों को जानना, शास्त्र को जानना ये ज्ञान नहीं है। तो जहाँ वो बताया है जो चीज, वो सचमुच अपने अंदर ऐसा भाषित होता है कि नहीं, इसकी ओर ज्यादा ख्याल है। तो जो आत्मा का ज्ञान का स्वरूप भाषित हो जाए, अपने को ज्ञान है ये तो ख्याल आता है ना, मैं हूँ ऐसा भी ख्याल आता है कि नहीं आता? आप कैसे हो? हाँ मैं ठीक। तो मैं इस शब्द से तो हर चीज, हर कोई जीव, एक इंद्रिय जीव भी है, उसको मैं पना का प्रतीति है, क्योंकि अपने को सुख अपने को दुख, ये जो प्रतीति है ना, अपनी अपनी प्रतीति है, परंतु ये मैं कैसा है इसके बारे में जीवन जानना। मैं हूँ इसके बारे में 100% खातिर है हर एक को। किसी को पूछा कि आप कल आए थे? हाँ मैं आया था। आज आओ, यानी आए हो, प्रेजेंट लेते हैं ना, दीपाली, हाँ यस मैडम। तो ये सही, मैं उपस्थित हूँ, तो मैं हूँ ऐसी प्रतीति है। अब मैं हूँ को हमने क्या क्या माना है, कि मैं शरीर हूँ, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मैं घर गृहस्थी वाला हूँ, तो ये मैं के बारे में उसका अनभिज्ञ है, उसके अज्ञान है। तो ये मैं के बारे में जो अनादि से अज्ञान चल रहा है, कि जिस जिस पर्याय में गया उस शरीर रूप अपने को माना, जो जो राग द्वेष होते गए उस राग द्वेष रूप अपने को माना, तो इनको अभी सात तत्वों में डालकर इसकी बराबर एनालिसिस करनी है कि मैं सचमुच कौन हूँ। ये सारा इतना तो दिखाई देता है इंद्रियों के द्वारा, तो यही बाहर का शरीर ही दिख रहा था, तो इसी को मैंने मैं माना, क्योंकि मैं पना की प्रतीति भी इतने प्रदेशों में हो रही है, मेरे इतने प्रदेश है, और मुझ में तो ये प्रतीति मेरे कारण हो रही है क्योंकि मैं यहाँ हूँ, परंतु ये मैं हूँ ऐसा यहाँ देखा तो क्या शरीर दिखा, तो इसी में यही मैं हूँ ऐसी उसको गलत धारणा, उसकी सोच ऐसी, मान्यता ऐसी होगी कि यही मैं हूँ, परंतु क्या ये सच मैं हो सकता हूँ? तो फिर हमने छह द्रव्य देखे, उसमें पुद्गल के क्या गुण है और जीव के क्या गुण है वो देखे, तो पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण, तो ये जो दिखाई तो दे रहा है, जो जो दिखता है वो क्या हो सकेगा? पुद्गल। परंतु ये दिखाई देता है, उसका ज्ञान होता है, वो कौन होगा? वो मैं। तो ऐसे ये तो एग्जाम्पल दिया मैं, तो ऐसे बार बार सात तत्वों के द्वारा अपना स्वरूप निश्चित करते 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 अपने को पकड़ने का प्रयत्न करते, ज्ञान ही अपना प्रकट लक्षण है। तो प्रकट लक्षण तो ख्याल में आ रहा है, जानना 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 ये हो रहा है, ये जानने का कार्य कहाँ हो रहा है? पर वस्तु में कि अपने में? अपने में हो रहा है। तो ज्ञान वो जानने रूप कार्य जहाँ पूरे जिन प्रदेशों में हो रहा है वही तो मैं हूँ। अभी पहले समझने के लिए हमने ये द्रव्य है, गुण है, पर्याय ये सारा समझा था, परंतु द्रव्य और पर्याय कोई भिन्न वस्तु नहीं है। जहाँ ये जानने का कार्य हो रहा है, जो जान रहा है वो स्वयं ही तो मैं हूँ। तो इससे ऐसे ऐसे वो ज्ञान के द्वारा अपने आप को पकड़ने के प्रयत्न करें। अभी ये तो बताना आसान है, अभी प्रैक्टिस करोगे तो या वो भी आसान हो जाएगा। और इसीलिए ये बार बार अपना स्वरूप निश्चित करना, लक्षण के द्वारा अपने को पकड़ना, लक्षण के द्वारा आत्मा ज्ञान में ज्ञान ऐसे रटना नहीं है। अभी ज्ञान अपने में हो रहा है, वो ज्ञान हो रहा है वही तो मैं हूँ, ऐसे अपनी ओर वो दृष्टि ले जाना। तो ये तो दिन भर हम कर सकते हैं ना, ऐसे बेड पर लेट पर बिस्तर पर लेटे लेटे भी हो सकता है जब तक नींद नहीं आती, तो 24 घंटे चलता है जब तक ये इसकी सच्ची रुचि लगेगी, तो नींद में भी वही वही चलता रहता है। अभी नींद में अन्य अन्य कुछ बातें चलती रहती है, दुनियादारी के सपने आते हैं, तो जब हमने इसकी सच्ची रुचि हो जाती है तो नींद में भी 24 घंटा ही अंदर रटन चलता है और एकदम आसान लगेगा। इसमें कोई यानी इसका भी रुचि नहीं थी, इसको सुना नहीं था, सच्ची पहचान नहीं थी, सच्चा मार्ग बताने वाले नहीं मिले थे आज तक, तो अभी तो मार्ग मिल गया है तो इसमें अभी कचास कहाँ रही, तो हम कहेंगे नहीं आपकी रुचि नहीं है। इतना सुनकर भी अन्य अन्य चीजों में अपना मन अन्य चीजें करते हो ऐसी बात नहीं है, व्यापार करते हो ऐसी बात नहीं है, रुचि कहाँ पड़ी है। इसकी रुचि बढ़ जाने पर वो व्यापार करते करते भी ये सिद्धांत सारे उधर हम लगाते हैं, इसका एप्लीकेशन ही करना है ना, वो अपने ज्ञान में ही करना है। जो होते हुए कार्य में वो कौन सा कार्य किस चीज का है, उसके लक्षण क्या है, मेरा लक्षण क्या है, ये सारा ही चलते रहेगा, 24 घंटे चलते रहेगा। तो इसलिए स्वभाव सम्मुख होकर ये सारे निर्णय करने हैं, अपना निर्णय कर नहीं करता और सारे दुनिया का निर्णय करता है तो वो सच्चा निर्णय नहीं। हम तो सारे सब जानते, ये जानते क्या है, जानने वाले को नहीं जानते और दुनिया को जानते, ये कैसा जानपना, इसको तो मूर्खपना करा। जानने वाला मैं स्वयं हूँ और मैं क्या कहता हूँ, नहीं मैं तो सबको अच्छे तरह से जानता हूँ परंतु मैं हूँ क्या नहीं इसको पता नहीं। अरे तो ये किसने जाना, मैंने ही जाना परंतु अपने बारे में ही अज्ञानता के साथ में कुछ गलत विचार करता हूँ। इसलिए यहाँ सत्समागम का जो महत्व बता रहे है, सत्समागम में सत यानी जीव जो है, मैं स्वयं जो हूँ, उसका स्वरूप अपने को यहाँ से पता चलता है। तो ऐसे बताने वाले जो जीव है, अन्य जो ज्ञानी है, अन्य जो धर्मात्मा है, तो अन्य जो सत्य शास्त्र बताने वाले कोई जो है, तो उनकी तरफ से ये सुनकर अपनी ओर ले जाएगा तो ही कार्य करे। अकेले ज्ञानियों का समागम करने से कुछ नहीं कार्य होगा, वहाँ जो सुना, वहाँ जो हमने परिचय किया है, वो मैं स्वयं हूँ और मुझे मेरी ओर देख कर उसका निर्णय करना। इसलिए यहाँ क्या बार बार कहते हैं, स्वभाव सम्मुख होने से ही कार्य होगा। क्रमबद्ध पर्याय में भी ये बात आई थी बार बार कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय स्वभाव के सम्मुख होकर ही हो सकता है, अन्यथा नहीं होता। आप नहीं थे ना क्रमबद्ध पर्याय, अब यहाँ पढ़ेंगे और जीवन, ये जीवन भर ना लास्ट पैराग्राफ, जीवन भर सत्समागम में रहने पर भी आत्मलाभ की प्राप्ति नहीं हुई, इसका भी एकमात्र यही कारण है कि उनकी दृष्टि सत समागम पर ही रही, स्वभाव के सम्मुख नहीं हुई। यानी वहाँ ज्ञानियों के सानिध्य में रहे, गुरुदेव जो कांजी स्वामी थे उनके तो बहुत सारे फॉलोअर कितने सालों से वहाँ रहकर सुनते रहे, परंतु उनको अहोभाव किसका आया, गुरुदेव का। ऐसे ही बताने वाले ज्ञानी का तो अहोभाव आता ही है परंतु उतने में ही रुक गए। वे जो बता रहे थे वैसा अपने में स्वभाव सन्मुख होकर जाना नहीं तो हाथ में कुछ नहीं आया। तो इसलिए क्या कहते कि दृष्टि कहाँ पड़ी रही, सत समागम पर। हम साल में इतने बार जाते ही है, हम रोज 1 घंटा सुनते ही है, तो उसके बिना हमको चैन नहीं पड़ती, तो कहाँ ये सारे वो सत समागम पर, स्वाध्याय पर, ये बहिर्लक्षी शास्त्र ज्ञान पर ही दृष्टि रही। उसको तो जो बताते थे वो तो अपनी ओर देखने को बताते थे, वो तो किया ही नहीं कभी, और अकेले शास्त्र में पढ़ने 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 में चला गया जी, और मानता कार्य मैंने तो इतना किया तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इतना ही रह गया कि स्वभाव सम्मुख दृष्टि ले जानी थी, वो नहीं। वो तो महत्व है, पूर्ण है, वो तो यानी बेस है, उसके बिना तो 3 काल में समय दर्शन नहीं होगा। अतः सत्समागम में रहना तो अच्छा है, पर उसके लिए भी व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। वहाँ जिसका जितना महत्व है हमें उतना अवश्य स्वीकार करना चाहिए, यानी सत समागम का महत्व है और हमको उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार सत समागम के महत्व को अस्वीकार करने में हानि है, सत समागम को जो नहीं मानेगा उसकी तो हानि है ही, परंतु उससे अधिक हानि उसे आवश्यकता से अधिक महत्व देने में। पंच परमेश्वरी की जो शरण नहीं लेगा उसको तो मोक्ष का मार्ग मिलेगा ही नहीं, परंतु जो वहीं पर रुका रहेगा, उन्होंने जो बताया हुआ मार्ग वो अपने में है तो अपनी ओर दृष्टि नहीं ले जाएगा, वो भी संसार में ही भटकेगा। तो इसलिए क्या कहते, सत्समागम जरूर करना, उसका महत्व भी है, परंतु सबसे अधिक महत्व किसका है, स्वभाव सम्मुख होने का। तो उसकी जितनी उसकी महत्ता है उतनी महत्ता को देना उसको, और वही सब कुछ है उतना करने मात्र से मेरा कार्य होगा, ये जो मान्यता है वो गलत। वास्तविक सत तो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही है। द्रव्य को सत कहा है ना, सब द्रव्य लक्षण, ये हमने तो सीखा है, द्रव्य का ही नाम सत है। और मेरे लिए सत कौन है, मैं स्वयं, बाकी सब मेरे लिए असत है। कितने विश्व में द्रव्य है, अनंत है, परंतु मेरे लिए सत यानी मैं द्रव्य, जो मैं रूप द्रव्य हूँ, वो कितने मेरे लिए, हाँ तो मैं स्वयं द्रव्य हूँ, तो मेरे लिए बाकी जैसे जीव तत्व और अजीव तत्व ना, अपने से बाकी सबको अजीव तत्व में बता दिया, तो मैं स्वयं सत हूँ, अस्थि मेरी मेरे में है, तो बाकी सारे नास्ति हो गए कि नहीं, तो बाकी सारे मेरे लिए असत है मेरे लिए। वैसे वास्तविक सत्य अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही है, उसके समागम में ही सबका लाभ होने वाला है। अपने पर्याय को भी वहाँ त्रिकाली का लक्ष्य करना है, उस अपेक्षा ख्याल में रहना। मैं तो कहूँगी बाकी सब असत ही कह दिया, सब आनंद ब्रह्म को असत कह दिया, ऐसे अपेक्षा लगाकर बात हो रही है। तो त्रिकाली की हमें दृष्टि करनी है, तो उस समय पर्याय की भी दृष्टि हम कर नहीं रहे, उसको गौण कर दिया, गौण करके उसको भी असत में डाल दिया। और मुख्यतः किसकी की, त्रिकाली ध्रुव भगवान जो कायम टिकने वाला एक रूप ध्रुव अंश है, सामान्य अभेद नित्य एक ऐसा, तो उसकी दृष्टि करनी है। तो उसके समागम में ही सबका लाभ होने वाला है, क्योंकि उसकी दृष्टि करने से ही पर्याय सम्यक दर्शन होने वाला, उसकी संगति ही वास्तविक सत्संगति है। तो हमें सत्संगति करना है, यानी किसकी संगति करना है, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की संगति करना है, यानी उसको जानते रहना है। हमारी श्रद्धा का श्रद्धेय यानी श्रद्धा का विषय, जिसकी श्रद्धा की जाती है उसको कहते हैं श्रद्धेय, यानी दृष्टि का विषय। देखो दृष्टि दृष्टि शब्द बार बार आता है, श्रद्धा कहो, आप कहते कि आपने इतना सुनाया, हमने इतना पढ़ा, तो हमारी श्रद्धा हो गई, विश्वास हो गया, उसको दृष्टि को दृष्टि नहीं कहते, उसको श्रद्धा नहीं कहते। तो ये विश्वास है नहीं क्या, तो मैं कौन हूँ उसके बाबत में ये, इसको यही मैं हूँ, ये हो गया दृष्टि का विषय, तो हमेशा स्व होता है। ज्ञान का विषय स्व पर सब होता है, दृष्टि अकेले स्व को स्वीकार करती है, इसीलिए ये दृष्टि यानी समय दर्शन का विषय क्या है, समय दर्शन का विषय क्या है, तो ये देव है, गुरु है, शास्त्र, ये समझ में नहीं, इसमें से मैं कौन हूँ इसका जब निर्णय हो जाता है, स्व को जो पकड़ लेता है, वो स्व की यही मैं ऐसी जो श्रद्धा हुई, वो श्रद्धा उसको कहते हैं श्रद्धा, यानी दृष्टि का विषय लिया हुआ। ज्ञान का ध्येय और ध्यान का ध्येय तो त्रिकाली सत निज भगवान आत्मा ही बनना चाहिए। ये ज्ञान का ध्येय भी स्व लिया यहाँ, किस काल में, अनुभूति के काल में, कि स्व को ही जानता रहेगा, स्व ही मैं हूँ ऐसा दृष्टि भी उसने ले ली, और उसी में वो रम गया, उसी को जानते रहा, तो उसको कहते कि यही जो त्रिकाली सत निज भगवान आत्मा ही जब ज्ञान दर्शन और चारित्र का विषय होगा, यानी श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का ज्ञेय और ध्यान का ध्येय, तब समय दर्शन होगा। जो त्रिकाली भगवान आत्मा ही बनना चाहिए, उस त्रिकाली ध्रुवरूप सत का स्वरूप बताने वाले ज्ञानी धर्मात्मा ही सत्पुरुष कहलाते हैं। जो अन्य दुनियादारी समझाएंगे वो सत्पुरुष नहीं कहलाए, उनकी संगति को भी सत्संगति कहते हैं। बाकी पुण्य पाप के प्रपंच में उलझे हुए लोग न तो सत्पुरुष है और न उनकी संगति सत्संगति ही है। पुण्य में उलझे वाले भी कहा है, अकेले पाप में नहीं, अकेले पुण्य पाप में ही उलझने वाले या उलझाने वाले जो है, चलो तुम इतना पुण्य करो बस हो गया तुम्हारा कल्याण, ऐसा भी जो उपदेश कर रहे हैं वो भी सत्संगति नहीं है। निश्चय सत्संगति तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के ज्ञान श्रद्धा और ध्यान का ही नाम है, वही सत्संगति है, जो रत्नत्रय स्वरूप है, जो पर्याय प्रकट हुई किसके आश्रय से, सत के आश्रय से, तो वही सत्संगति। पर आत्मा का स्वरूप बताने वाले, आत्मानुभव की प्रेरणा देने वाले आत्मानुभवी पुरुषों की संगति को, उनसे त्रिकाली भगवान आत्मा का स्वरूप सुनने को व्यवहार से सत्संगति कहते। यानी सच्ची सत्संगति तो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानते रहना ही है, परंतु व्यवहार से उपचार से किसको सत्संगति कहते है कि ये जो त्रिकाली भगवान ध्रुव आत्मा का स्वरूप कैसा है, उसको कैसे प्राप्त करना, उसके बारे में कैसे सोचना, तो कैसा है इसका स्वरूप बताने वाले भी आत्मानुभवी जो पुरुष है उनकी संगति को भी सत्संगति कहते। मात्र उनकी सेवा टहल करते रहने को तो व्यवहार से भी सत्संगति नहीं कहा जा सकता। यानी उसकी सेवा की, उसको बराबर खाना पीना खिलाया, उनके बराबर खबरदारी ले ली, वो सत्संगति नहीं है। वो क्या समझाते, जिस शुद्धात्मा को उन्होंने समझाया उसको सुनना, वो है सत्संगति। अतः हमारा तो यही कहना है कि निश्चय सत्समागम के उद्देश्य से व्यवहार सत्समागम करना भी अच्छा ही है। किस उद्देश्य? निश्चय सत्समागम के उद्देश्य, अपने शुद्धात्मा को जानने के उद्देश्य से उनको सुनना, हाँ वो व्यवहार सत्संगति। मगर उद्देश्य मुझे तो अपने शुद्धात्मा को जानना है, ऐसे बहुत से मिलते हैं, हमें तो सम्यक दृष्टि जीव देखना है। बोला क्यों देखना है? उनको देखना है क्या, सुनना है? यानी कभी ऐसा विचार नहीं आता कि मुझे शुद्धात्मा को देखना है। क्या क्या ऋषि होती है? अरे मुझे सम्यक दृष्टि देखना है। क्यों देखना है? देखने से तो कुछ पता नहीं चलने वाला। चौथे गुणस्थान वाले जीव को देख कर या उसके लौकिक आचार विचार देख कर कुछ हाथ में नहीं आने वाला। वो जो शास्त्र की बातें सुनाएगा और वो हम स्वयं के शुद्धात्मा की दृष्टि से उसको सुनेंगे तो ही वो कार्यकारी। अकेले दुनिया उनके पीछे है इसलिए हम भी चलो जाए देख ले, उनका दर्शन तो कर ले, ये बात नहीं। ये व्यवहार सत्संग चल रहा है। और जब अपने आत्मा की उन्मुख हो जाओगे, दृष्टि करोगे, तो निश्चय सत्संग होगा। प्रश्न, क्या त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्वरूप बताने वाले ही सज्जन है, सत्पुरुष है? शेष सब सज्जन नहीं है, सत्पुरुष नहीं है? लोग में तो ऐसे हजारों महापुरुष है और हो गए हैं कि जो लोगों को दया दान का उपदेश देते हैं, परोपकार की प्रेरणा देते हैं, यहाँ तक कि जिन्होंने जगत के लोगों की सुख सुविधा के लिए अपना संपूर्ण जीवन ही समर्पित कर दिया है, क्या वे सज्जन नहीं है, क्या वे सत्पुरुष नहीं है? क्यों नहीं, वे भी सज्जन है, पर वे सब लौकिक सज्जन है। हम देखते ना, बहुत समाज सेवक है या बड़े बड़े कोई नेता हो जाते हैं कि वो समाज के लिए अपना जीवन पूरा लगा देते, अर्पित करते, परंतु ये लौकिक सज्जन है। किंतु यहाँ पर लोकोत्तर मार्ग की बात चल रही है। लोकोत्तर मार्ग में तो उन्हीं को सत्पुरुष कहा जाता है जो मुक्ति के मार्ग पर स्वयं चलते हो और जगत को भी मुक्ति का मार्ग बताते, जगत को मुक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हो। मुक्ति के मार्ग पर चलने की क्रिया प्रक्रिया स्वाधीन क्रिया है। हमने देखा है कि प्रत्येक क्रिया जो है, पर्याय जो है, वो प्रत्येक द्रव्य की अपने में होती है। तो ये स्वाधीन है कि पराधीन है? स्वाधीन है। तो ये मुक्ति का मार्ग की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो भी स्वाधीन है, स्वाधीन प्रक्रिया है। अतः वह उपादान के आश्रय से ही संपन्न होती है, निमित्त के आश्रय से नहीं। निमित्त होता अवश्य है, व्यवहार सत्समागम होगा, परंतु उससे अपने में कुछ होने वाला नहीं। हम स्वयं अपनी दृष्टि करेंगे तो ही अपने में होगा, तो ही सबकी दृष्टि करेंगे। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करेंगे तो अपनी पर्याय में भी मोक्ष मार्ग प्रकट होगा और तब सामने व्यवहार सत्समागम होता है। परंतु व्यवहार वो सुना इसलिए हुआ, ऐसा नहीं। मुक्ति के मार्ग पर चलने ये हो गया, आश्रय से नहीं। आत्म कल्याण का महान काम जिस उपादान के आश्रय से, जिस उपादान को ध्यान का ध्येय, श्रद्धान का श्रद्धेय बनाने से संपन्न होता है, संपन्न होता है यानी प्राप्त होता है, कंप्लीट होता है, वह त्रिकाली उपादान तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं का त्रिकाली निज भगवान आत्मा ही है। प्रत्येक का अपने अपने पास है ना, यदि कोई एक होता पर वस्तु होती तो उसको हासिल करने में हम सब झगड़ा कर देते। प्रत्येक का अपने अपने पास है, कहीं लाने जाना नहीं है। वो तो स्वतः सिद्ध है, अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है। ऐसा भी नहीं क्या करे अभी हम बीमार है, अभी कल मरे के आज मरे हमारा त्रिकाली भगवान आत्मा नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो अनंत काल तक रहेगा। तो ऐसी किसी को डरने की बात नहीं कि चलो अरे मेरी तो अभी जिंदगी बहुत कम हुई, मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। अवश्य होगा, उसकी दृष्टि करने मात्र का अवकाश है कि वो हो जाएगा। उसे ही ध्येय बनाने वाली ध्यान पर्याय, यानी जिस ध्यान की पर्याय, हमारा तो ध्यान में ही सारा, ये कैसा ध्यान करना कैसा ध्यान करना, अरे पर उसका ध्येय निश्चित नहीं करते और अकेले ध्यान कैसा करना इस पर चर्चा चलती है। ऐसे जी सीधे रखो, फिर यहाँ दृष्टि ले जाओ, फिर अभी ऐसा करो, अभी ऐसा करो, यानी ध्यान कैसा करना इसके विधि बताई जाती है। परंतु यहाँ निश्चय क्या, निश्चित क्या करना है, ध्येय ध्यान किसका करना है, ध्यान कैसे करना है ये सिखाने की जरूरत नहीं होती। एक माँ भी अपने बच्चे का ध्यान बराबर रखती, पति नहीं आए रोज के समय पर तो वो विचलित हो जाती, बार बार ध्यान उसकी तरफ सोचती है, बार बार ध्यान हो जाता है ना। तो ये ध्यान करने को सिखाना नहीं पड़ता, जो अपनी प्रिय चीज है जिसकी महिमा है उसके बारे में हम बार बार सोचते हैं, बार बार उपयोग वहां चला जाता है, तो ये हुआ ध्यान। परंतु ये किसका करना है, शरीर का करना है कि ये नासाग्र दृष्टि नाक का करना है कि किसका करना है, तो आत्मा का करना है। और आत्मा में भी रागी द्वेषी आत्मा का करना है क्या, आत्मा भी बहुत प्रकार का है। ये तो शरीर वाले को भी यहाँ कह दिया एक इंद्रिय जीव, तो क्या इंद्रिय वाला आत्मा का ध्यान करना है कि राग द्वेष वाले आत्मा का करना है कि ये पर्याय वाले आत्मा का करना है, श्री काली ध्रुव। तो ये इसमें भी ये कौन से आत्मा का ध्यान करना है, ये तो ध्येय निश्चित करना है। ध्यान तो हो जाता है, ये आर्द्र रौद्र ध्यान नहीं करते हम दिन भर। किसी वस्तु प्राप्त करनी हो तो बार बार वो कितने रात रात नींद नहीं आती, अरे हमको ये ऐसा करना है, ये मिलने वाला है, कोई चीज मिलने वाली हो भी तो भी उसके ऊपर कितना अपना उपयोग चला जाता है। तो ये ध्यान करने की कोई यानी सिखाने की जरूरत नहीं है, ध्यान ये सहज हो जाता है। तो किसकी किसको निश्चित करना है, ध्येय को। तो ध्येय को जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये क्या चीज है, उसका स्वरूप कैसे है, हम आज तक उसके बारे में क्या सोचते हैं और वो असली क्या चीज है, तो ये ध्येय का स्वरूप निश्चित करना और वो बताने वाले ज्ञानी है। तो वो हमको सहज स्वरूप ख्याल में आया तो वो अपने में है ना, कि हमारा त्रिकाली भगवान बाहर है ये शास्त्र में है, अपने में, तो इसका लक्ष्य छोड़कर अपना लक्ष्य करना पड़ेगा, जो त्रिकाली भगवान आत्मा जो बताया उसकी ओर ले जाना है, वो वाणी की ओर नहीं। जैसे चंद्रमा बताया किसने तो उंगली को नहीं देखना है, चांद को देखना है, वैसे त्रिकाली भगवान ध्रुव आत्मा ये व्यवहार सत्संगति से प्राप्त हमको जानने में आया, ये हमने उनकी तरफ उसके बारे में जाना, उसको नहीं जाना। तो उसको जानना हो तो कहाँ देखना पड़ेगा, वो त्रिकाली ध्रुव आत्मा को ही देखना पड़ेगा, अपने दूसरे के नहीं, दूसरे को तो देख ही नहीं सकते। लक्ष्य सही यानी किसको, हाँ किसको लक्षित करना है, उस आत्मा का पहले लक्षण द्वारा उसके पहचान करनी, वो तो ये सारा व्यवहार सत्संगति में आ जाएगा। और जब असली उसको पहचानना है, अभी उसको जानना है, तो उपयोग अंतर्मुख करेंगे तो ही वो ज्ञान में आएगा। क्या लगता है, देखो तो उसे ही ध्येय बनाने वाली ध्यान पर्याय, उसे ही ज्ञेय बनाने वाली ज्ञान पर्याय, और उसमें ही अपनापन स्थापित करने वाली। क्या कहा, श्रद्धा का काम, अकेला विश्वास करना ऐसा नहीं, वो हम जिसको विश्वास कहते ना, आपने बताया हाँ हमने मान लिया, वो विश्वास नहीं किया, उसमें अपनापन, अपनापन यानी मैंपना की बुद्धि हो जाए, तो उसमें ही अपनापन स्थापित करने वाली श्रद्धान पर्याय क्षणिक उपादान है। जो पर्याय प्रकट हुई उसी समय उसकी जो योग्यता है वो क्षणिक उपादान है। अतः त्रिकाली उपादान रूप निज भगवान आत्मा का स्वरूप बताने वाले ज्ञानी पुरुष ही वे सत्पुरुष है जिनका उपदेश मुक्ति के मार्ग में निमित्त बनता है, तथा इसी कारण वे भी निमित्त कहलाते हैं। यानी वो क्या निमित्त है, उनका उपदेश, देखो फिर से उनका उपदेश किस संबंध में, त्रिकाली उपादान रूप भगवान आत्मा का स्वरूप बताने वाला उपदेश, वो उपदेश निमित्त है, इसलिए उपचार से उस ज्ञानी को भी निमित्त कहेगा, इस कारण वे भी निमित्त कहलाते हैं। पर ध्यान रहे, उनका भी वही उपदेश वास्तविक निमित्त है जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए दिया गया हो। समझो कोई ज्ञानी है और उसके बाल बच्चे उसको घर की कोई समस्या के बारे में प्रश्न पूछ रहे, तो हाँ वो तो अन्याय वाला अनिति वाला उपदेश तो नहीं देगा, ये बात सच है। परंतु वो संसार का मार्ग का जो उपदेश है, या धंधे में कोई तकलीफ है उसको, उसके बारे में कोई उसको मार्गदर्शन कर रहे, वो उपदेश नहीं कार्यकारी। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के बारे में जो उन्होंने उपदेश दिया, उसको कैसे प्राप्त करना है, इसका जो उपदेश देंगे वो उपदेश कार्यकारी, उसको हम निमित्त कह सकते हैं। आत्मा के अनुभव करने की प्रेरणा के लिए दिया गया हो और उसके कारण ही उन्हें मुक्ति के मार्ग में निमित्त रूप से स्वीकार किया गया। जिन लोगों को उस त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का परिचय ही नहीं है, जिनकी वाणी में उसकी चर्चा तक नहीं आती, अपितु यानी परंतु, जो उसका नाम सुनकर उसकी चर्चा सुनकर भड़क उठते हैं, उद्वेलित हो जाते हैं। उद्वेलित होना यानी वो तो एक्साइट होता है, एक्साइट यानी बैड सेंस में, क्षोभ हो जाता है, चले क्रोधायमानों से अशांत हो जाते हैं। उसकी चर्चा करने वालों को भला बुरा कहने लगते हैं, उनके लिए तो अभी दिल्ली बहुत दूर है, ये कहावत है, दिल्ली बहुत दूर है ने, उनका अभी वो तो सुलझना अभी लंबा है, उनको बहुत देर है अभी मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए। वे स्वयं ही उस परम तत्व से अपरिचित है, अतः वे मुक्ति मार्ग के सत्पुरुष कैसे हो सकते है। यानी भले हो सकते कि किसी ऊपर की पोस्ट पर हो, पोस्ट यानी बाह्य में कुछ तप या संयम अंगीकार कर किया हो, परंतु आत्मा के बारे में अनभिज्ञ है और उसकी चर्चा आती है, कोई प्रश्न पूछता है तो भी भड़क उठते हैं, तो समझना कि ये अभी गलत रास्ते पर है और उनका सुलझना तो दूर है अभी, तो मुक्ति के मार्ग में वे कुछ कार्यकारी नहीं है। अने लोगों को क्या है, बाह्य संयम देखकर आत्मा को कैसे प्राप्त करना है इसकी कुछ चर्चा करते नहीं है, और लोग तो बाह्य संयम को ही भूलते हैं। और हाँ, इतना संयम तो है ना, संयम तो है ना, इतना देखो हम तुम कर सकते हैं क्या इतना, वो इतने ठंडी में ऐसा ऐसा ऐसे उहारे कब चलते हैं और ऐसा इतने ठंडी है, तो हम तो इतने चार चार कंबल ओढ़ते हैं और वो कहाँ कैसे नग्नता लिए हुए, तो उसकी महत्ता आती है लोगों को। परंतु उनकी चर्चा में, उनके उपदेश में आत्मा की भी कुछ बात आती है कि नहीं, इसका निर्णय नहीं करते। यानी अज्ञानी तो स्वयं अज्ञानी है ही, और ऐसे लोगों के पास जाकर उसको उल्टा ही उपदेश मिलता है, तो मुक्ति मार्ग से वो दूर ही चले जाते हैं। तो ये निर्णय करना तो सुनने वाले को अपने निर्णय करना चाहिए कि क्या यहाँ अपने को मुक्ति का मार्ग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इतना तो सियाना है ना जी, खाना खाता है तो अपना पेट भरा कि नहीं भरा ये तो पता चलता है ना, कि वो पूछने जाना पड़ता है। तो वैसे हमें आत्मा को जानना है तो हमें आत्मा संबंधी कुछ बातें सुनने को मिलती है या खाली ऐसी कहानियां गप्पे चलती है, इसका तो निर्णय कर सकते हैं ना हम। जिन्हें त्रिकाली सत्य का परिचय नहीं, वे सत्पुरुष नहीं, उनकी संगति भी सत्संगति नहीं है। मुक्ति के अभिलाषी, अभिलाषी इच्छुक, मैं दीपाली के लिए खास ये उसका अर्थ बता रही हूँ, क्या है अंग्रेजी मीडियम वालों को ये संस्कृत मिश्रित जो हिंदी शब्द आते हैं तो उसका पता नहीं चलता, कुछ नहीं समझे तो पूछना हा? मुक्ति के अभिलाषी आत्मार्थी को सत्संगति तो अवश्य करना चाहिए, पर सत्संगति का सच्चा स्वरूप समझकर सत्पुरुष की पहचान कर ही उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। समर्पित होना यानी उसको धन दौलत देना ऐसी बात नहीं है, समर्पित होना ये जो वो शुद्धात्मा का स्वरूप बता रहा है उसको अपनी पूरी रुचि पूर्वक सुनना, यह है समर्पित होना। नहीं तो तन मन धन उसको दे दो, ये ऐसा वाला समर्पण नहीं होता, वह सर्वस्व समर्पण, सर्वस्व समर्पण, सर्वस्व क्या दोगे, धन दोगे कि नहीं, हाँ क्यों भाई, वो मांगेगा तो देना पड़ेगा ना। अपना स्व का सर्व देना तो धन अपना है क्या? चलो तो धन से तो बच गए, अपना अपना पूरा अटेंशन देना, वहां उपयोग अपना है ना। अपना क्या है? उपयोग। तो पूरा पूरा उपयोग किसने? जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात समझा रहे हैं, उसमें पूरा उपयोग देकर वो ग्रहण करना। तो उसका स्वरूप समझकर उसके प्रति समर्पित होना चाहिए, अन्यथा भ्रमित हो जाने की संभावना भी कम नहीं है। सत्पुरुष की सच्ची पहचान ही यही है कि जो त्रिकाली ध्रुव रूप निज परमात्मा का स्वरूप बताए, और ऐसा ही बताए कि अरे तू तो स्वयं भगवान हो, और अपने अपना लक्ष्य करके उसको प्राप्त कर लो। और जो कोई स्वयं मान वगैरह चाहना है, यश चाहता है, वो क्या कहेंगे? आप यहाँ मेरे शरण में रहो। सदगुरु का अर्थ होता है आत्मा की बात समझाने वाला कोई भी ज्ञानी, यानी गुरु। यानी हमारे सामने कांजी स्वामी आते हैं क्योंकि उन्होंने विशिष्ट उनकी चर्या थी। तो ऐसा नहीं कि वो ऐसे कोई घर गृहस्थी छोड़ कर गया हो वही गुरु हो सकता है, जो आत्मा की बातें समझाता है। क्योंकि चौथे पांचवे गुणस्थान वाला तो गृहस्थी है, पांचवे वाले के भी व्रत कुछ होते हैं, चौथा तो अविरत सम्यक दृष्टि है, उसके अभी व्रत नहीं है। ये हमारे तुम्हारे में उसमें कुछ फर्क, बाहर बाहर दुनिया में यानी बाहर की ओर से कुछ फर्क नहीं समझ रहा, परंतु आत्मा की बात, आत्मा को कैसे प्राप्त करना ये समझा रहा है। तो उसकी अपेक्षा यहाँ सत्पुरुष का है, यानी गुरु, यानी वो मुनि दीक्षा लिया हुआ गुरु ऐसे यहाँ बात सुन। हाँ, उसी को सत्पुरुष कहा है। हाँ, सदगुरु कब कहेंगे? जब हम अपना कार्य करेंगे तो। हाँ, यानी यहाँ उसको ही सदगुरु कहा है, वो उसी अपेक्षा, यानी विद्या गुरु आत्मा की बात समझाने वाला, इसको उस अपेक्षा से। परंतु कोई उसको मुनि मान ले या गुरु मान ले ऐसी बात। और जो चौथे वाला वो है तो उसके साथ भी ऐसा नमस्कार आदि व्यवहार नहीं होता, नमस्कार करना, वंदन करना, ऐसे यानी ऐसे हम हाथ जोड़ते हैं ना एक दूसरे को, जय जिनेन्द्र, वैसे तो होगा, परंतु जैसे हम भगवान और मुनियों को मस्तक झुका कर या अष्टद्र वैसे पूजन करते, वैसा व्यवहार उनके सामने नहीं होगा। चौथे पांचवे गुणस्थान वर्ती जीव, जैसे अभी स्वामी जी हो गए या और कोई है तो श्रीमद जी, तो वहाँ अर्घ्य चढ़ाना आदि व्यवहार भी नहीं होगा। हाँ, देखो ये तो लौकिक व्यवहार यानी व्यवहार है ना, उनको वंदन करना ये भी व्यवहार है। तो जो 28 मूल गुण सच्चे पालते हैं बिल्कुल शास्त्रोक्त कि उसमें जरा भी भूल चूक नहीं होती, ऐसों को नमस्कार करना, ये सम्य दृष्टि भी उनको नमस्कार करे, क्योंकि वो तो दिन मुद्रा धरे हुए है और बराबर शास्त्र में जैसे 28 मूल गुणों का बराबर सही स्वरूप बताया उसी अनुसार पालन करते हैं, तो बाह्य में तो उतना ही हम देख सकते हैं। हाँ, जो सम्य दृष्टि होगा उसके ख्याल में आता है, परंतु यदि वो बाह्य में पालता है और आत्मा के विरुद्ध और कोई संसार की बातें करता है तो भी वो नहीं करेगा उसको, कि उसकी बातों में भी वो शास्त्र के अनुसार बराबर कथन कर रहा है ये भी देखेगा ना। ये बाहर खाली व्रत पालता है और बातें सारी उल्टी करता है तो वो भी सद्गुरु नहीं हो सकता उसको भी। तो इसका निर्णय करने के लिए अपने को सीखना पड़ेगा कि 28 मूल गुण क्या है। हाँ, वो पता नहीं चलता, मगर कोई मिथ्यात्री है तो उसके बातों से समय दृष्टि तो उसकी पहचान कर लेगा, भले वो शास्त्र की बातें भी क्यों न बताता, तो उसके वो तो समझ में आता है। और तो ऐसा भी है ना, वो तो द्रव्यलिंग उसका सच्चा है, तो उसके तरफ देखकर उसको आहार आदि देना ये सारा अपना कर्तव्य, नहीं अन्य मुनियों के जैसे उसको भी वो आहार वगैरह देगा समय दृष्टि के। Thank you. हट जाते हैं ना वहां से। ऐसा नहीं कि उनको कोई अनादर करना चाहिए, उनको वो दुनिया में उनकी अन्य जीव को सुधारने या दुनिया में उसकी निंदा करने, ऐसी बात है। अब हम वहां से हट जाए, अपना निर्णय करने पड़ेगा। जहाँ अपने को ये सिद्धात्मा को प्राप्त करने की बात मिलती है, वहां से उपदेश ग्रहण करना और अपना कल्याण कर लेना। ये तो दुनिया तो ऐसी चलेगी, ये तो पंचम काल में कैसे कैसे मुनि होने वाले हैं। काल में हमने ये सिद्धात्मा की हमें बात सुनने को मिल रही है, तो इसमें इतना सारा सारे अड़चन है, ये जो ऑब्स्टेकल्स है, इसको टाल कर हमको ये बात मिल रही है। तो अभी कितना, अभी अपना ही है ना सारा उत्तरदायित्व। अभी हम अपना स्व सन्मुखता से अपना कल्याण करें। हाँ, तो वो समझ लेना, तो उसमें थोड़ी क्या है कि रत्नत्रय की भी बात करेगा और फिर ऐसे भी, तो उसमें चल जाता है, अपने को पता चल रहा है, ये सारा पोल पट्टी कुछ कुछ चल रही है। बाहर बाहर बातें तो कुछ शास्त्र के शब्द लेकर थोड़ा कुछ एक दो वाक्य तो उसमें से शास्त्र में ही पढ़ते हैं, तो आई परंतु उसका अर्थ सारा गलत कर शास्त्र में भी आएगा। देखो ये कर्म से ऐसा हुआ वैसा हुआ, जीव ने कर्म बांधे, तो देखो जीव को कर्म बांधना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, ऐसी बातें सारी करेगी कि वो निमित्त का जो कथन है उसको सत्य कथन में प्रस्तुत करेंगे। तो ख्याल में आता है कि ये सारा गड़बड़ चल रहा है यह मामला, तो हम हट जाए वहां से। इतना तो निर्णय कर सकते हैं ना कि कुछ एक व्याख्यान सुना तो उस सुनने में अपने को पता चला ना कि यहाँ सत्य बातें कितनी और क्या है, और उसके लिए स्वयं पारखी होना जरूरी है। दूसरा बता दे हमको, अरे ये गुरु सच्चे है, दूसरा बता दे नहीं ये मिथ्या है, तो उसके अनुसार नहीं, हम स्वयं उसमें परख करने को आनी चाहिए। देखो इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये हुआ था ना ऊपर का, कि दुनियादारी में उलझाने वाले, जगत के प्रपंच में फंसाने वाले पुरुष कितने सज्जन क्यों न, सब पुरुष नहीं है। देखो उसके आगे का, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम सत्संगति के नाम पर असत्संगति में ही न पड़े रहे, अन्यथा यह अत्यधिक यानी अति अधिक यानी बहुत क्यों बहुत अधिक मूल्यवान मानव जीवन यूं ही चला जाएगा, भव का अंत नहीं आवेगा। भव का अंत लाना हो तो निमित्ताधीन दृष्टि छोड़कर, ये निमित्त उपादान हम पढ़े ना, तो ये भव का अंत लाने के लिए क्या, निमित्ताधीन दृष्टि छोड़कर त्रिकाली उपादान रूप निज स्वभाव का आश्रय लो और उसका स्वरूप समझाने वाले, उसी में जम जाने और रम जाने की प्रेरणा देने वाले सत्पुरुष की संगति करो, समागम करो, शरण में जाओ, यही एक मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है। शरण में जाना यानी उनका उपदेश सुनना, शरण में जाना यानी उनके चरण छूना, ऐसी बात नहीं है। वे जो मार्ग बताते हैं उस मार्ग का अनुसरण करना, वो बताते हैं कि अपना आश्रय लो तो अपना आश्रय लेना, यही उनको सुनना है। अकेले कानून से सुनना वो सुनना नहीं है। हम बच्चे को कोई कहते कि जाओ पानी गिलास ले, एक गिलास पानी लाओ, तो अकेले सुन के बैठा रहे तो हम तो नहीं कहते इसने सुना, हम डांटते ना, क्या सुना क्या नहीं सुना। जब वो जाकर लेके आएगा तो हम उसको कहते इसने सुना। वैसे त्रिकाली भगवान आत्मा की बात सुनी क्या नहीं सुनी, क्या कहते हो 40 साल से सुन रहे, ये सुना क्या। जब त्रिकाली भगवान आत्मा का आश्रय लेंगे तो हम कहेंगे ये इसने सुना। देखो हम कहते ना जब कार्य होता है तब, वैसे सुना भी कब कहेंगे, जब वैसा परिणाम होगा तब हम कहेंगे हाँ इसने सुनी। अभी अगला प्रश्न 11वां, आप तो कह रहे हैं कि निज भगवान आत्मा का स्वरूप बताने वाले सत्पुरुष ही एकमात्र निमित्त है, पर हमने तो सुना है कि कुम्हार भी निमित्त होता है। कहां से कहां लेके, तुमने ठीक ही सुना है, क्योंकि कुम्हार भी निमित्त तो होता ही है, पर किस कार्य का? मिट्टी के घड़े बनने में कुम्हार निमित्त होता है। घड़ा एक कार्य है और उसका उपादान कारण मिट्टी है और निमित्त कारण कुम्हार, यह बात तो आरंभ में ही स्पष्ट की जा चुकी है, पर यहाँ तो सम्यक दर्शन रूप कार्य की बात चल रही है। जो सत्संगति की बात आई थी उसके निमित्त की बात चल रही थी, तो ये कौन सा कार्य की बात चल रही? सम्यक दर्शन के कार्य। कुम्हार को निमित्त किस कार्य में? वो घड़ा बनने रूप कार्य जो हुआ उसमें निमित्त बताया था। नहीं तो हमने क्या सीखा निमित्त उपादान? नहीं, हमने इतना ही सीखा कुम्हार निमित्त है और मिट्टी उपादान है, वो तो उसके एग्जाम्पल है, दृष्टांत है। नहीं तो निमित्त उपादान सारा सीख क्या है, क्या हुआ? निमित्त एकमात्र कुम्हार होता है और मिट्टी एकमात्र उपादान होती है। जय भगवान। तो हमें उपादान अपने को अपना कार्य सम्यक दर्शन रूप या मोक्ष प्राप्त करना है, तो वहाँ उपादान मैं स्वयं हूँ और फिर वो बताने वाले को हम वहाँ निमित्त बताएंगे। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी रूप जो सम्यक दर्शन रूप कार्य है, उसका उपादान तो भगवान आत्मा या उसका श्रद्धा गुण ही है, और निमित्त सत्पुरुष का त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्वरूप बताने वाला उपदेश है। एक उपदेश बताया। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारणों के रूप में जिनागम में जो पांच लब्धियों की चर्चा आती है, उनमें एक देशना लब्धि भी है। ये ऊपर से बात हुई थी देशना लब्धि के ऊपर, हमने देखी नहीं। वह देशना लब्धि आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने वाली सत्पुरुष की वाणी के रूप में ही उपलब्ध होती है। जिसको देशना लब्धि कहते हैं वो क्या है कि आत्मा का स्वरूप हमें बराबर भ्रमित है ना, हम शास्त्र पढ़ते फिर भी सच्चा उसका ख्याल नहीं आता, तो उसको स्पष्ट करने वाली जो सत्पुरुष की वाणी है उसी को देशना लब्धि का। उसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बहिरंग निमित्त के रूप में स्वीकार किया है। देखो इसको बहिरंग में डाला, अंतरंग में किसको देखा था हमने? इंदुदेव दर्शन मोह का क्षयोक्षम जो है या क्षयोक्षम, क्योंकि अंतरंग वो आई बात आगे। अंतरंग निमित्त तो दर्शन मोह का क्षय क्षयोक्षम या उपशम होता है। निमित्त रूपादान तो कारणों के प्रकार है, अतः वे तो प्रत्येक कार्य पर घटित होते हैं। जिनागम में आचार्यों ने घट और कुम्हार के उदाहरण से निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझाने का प्रयास किया है। वह तो दृष्टांत है ना, पर वह तो एक उदाहरण मात्र है। वस्तुतः तो प्रत्येक कार्य के अपने अपने जुदे जुदे उपादान निमित्त होते हैं। अनंत द्रव्य तो उनके अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों की हर समय एक एक पर्याय होती है, यानी इतने कार्य एक समय में चल रहे हैं, तो प्रत्येक कार्य का अपना अपना उपादान स्वतंत्र है और प्रत्येक कार्य का अपना अपना निमित्त भी स्वतंत्र है। कार्योत्पत्ति की प्रक्रिया समझने के लिए इन दोनों को ही प्रत्येक कार्य पर घटित करके देखना चाहिए, पर यहाँ अध्यात्म का प्रकरण है, अतः सम्यक दर्शन रूप कार्य पर उपादान निमित्त को घटित किया जा रहा है। देखो इतने सारे उदाहरण है और आप बार बार सम्यक दर्शन पर ही क्यों घटित कराते हैं? क्योंकि हमें तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, उस कार्य को हमको प्रकट करना है, तो उसके लिए उसका कारण कौन सा होगा, उसका निमित्त कौन होगा, इसको हम निश्चित करें। यह विचार किया जा रहा है कि यदि हमें सम्यक दर्शन रूप कार्य की उपलब्धि करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो क्या करना चाहिए। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि सम्यक दर्शन रूप कार्य का कारण जो त्रिकाली उपादान रूप ध्रुव निज भगवान आत्मा है, उसके आश्रय से ही मिथ्या दर्शन पर्याय का अभाव करती हुई सम्यक दर्शन पर्याय स्वकाल में प्रकट होती है। तो त्रिकाली उपादान रूप ध्रुव निज भगवान आत्मा तो मैं हूँ, और उसी के लक्ष्य से मिथ्या दर्शन पर्याय का व्यय और सम्यक दर्शन पर्याय की उत्पत्ति। क्यों? क्योंकि उसी पर्यायगत योग्यता से। जब सम्यक दर्शन रूप पर्याय प्रकट होती है, तब मिथ्यात्व नामक कर्म का क्षय क्षयोक्षम या उपशम रूप अभाव नियम से होता है, यानी उदय का वहाँ अभाव रहता है, तथा उसके पूर्व सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले उस आत्मा को किसी ज्ञानी सत्पुरुष से, आत्मानुभवी किसी अन्य जीव से भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट करने वाले उपदेश का लाभ भी अवश्य प्राप्त होता है। वो मुझे कैसे मिलेगा, कहाँ ढूंढू, ऐसे कोई चिंता की जरूरत नहीं। इस प्रकार सम्यक दर्शन रूप कार्य में मिथ्यात्व कर्म के उदय का अभाव अंतरंग निमित्त है और सत्पुरुष का उपदेश बहिरंग निमित्त है। तो निमित्त कब कहेंगे, यदि सम्यक दर्शन रूप कार्य हो तो। प्रश्न, जब सम्यक दर्शन के पूर्व देशना लब्धि भी होती ही है और उसमें निमित्त सत्पुरुष का उपदेश ही होता है, तो फिर सत्पुरुष की खोज तो करनी होगी। अभी प्रश्न तो सभी को यही है ना, सत्पुरुष की खोज तो करनी होगी, सत्पुरुष की पहचान भी करनी ही होगी। फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आत्मार्थी को निमित्तों की खोज में व्यग्र नहीं होना चाहिए? हाँ, सत्पुरुष की पहचान तो करना ही चाहिए। बिना सच्ची पहचान के तो पक्ष पर ठगाए जाने की संभावना बनी रहती है। इसी कारण सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है, क्योंकि वो निर्णय हो जाता है, हाँ यही सत्य परम सत्य है। देव जो है, देव का स्वरूप ऐसा ही होता है, इसी को हम देव मानेंगे, अन्यथा ये देव नहीं हो सकते। गुरु भी इसी को ही मानेंगे और शास्त्र भी ऐसा ही सच्चा है। तो ये देव गुरु शास्त्र जो अभी प्रकरण चल रहे हैं, रत्नकरण शौका जान, देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, वो मूर्ता रहित वगैरह वगैरह सारा उसमें ले लेना। बिना सच्ची पहचान के तो पग पग पर ठगाए जाने की संभावना बनी रहती। इसी कारण सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है, क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान बिना तो सन्मार्ग पर लगना ही संभव नहीं है। आत्मार्थी भाई बहन ज्ञानी सत्पुरुषों की खोज भी सहज भाव से करते ही है। न तो सत्पुरुषों की पहचान का ही निषेध है और न खोज का ही। खोज करने का निषेध नहीं है। क्या निषेध किया था? खोज में व्यग्र होने का निषेध किया। ये खोज में ही आकुलित होने का, टेंशन लेने का, उसके अरे मुझे नहीं मिलना, नहीं मिलना, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, ऐसे नहीं। खोज करो तो उसमें व्यग्र होने का निषेध किया था। पर खोज में व्यग्र होने का निषेध तो है ही। व्यग्रता को तो किसी भी रूप में ठीक नहीं माना जा सकता। व्यग्रता ने उसका माथे पर भार लेना, टेंशन लेना, उसमें ही आकुलित व्याकुलित होते रहना, इसका निषेध किया है। किसी भी चीज के बारे में ये तीव्र आकुलता वाले को उपयोग अपने स्व की ओर नहीं ले जा सकता। वस्तुतः बात यह है कि उपादान और निमित्त का एक सुमेल होता है, यानी जब जब उपादान की पर्याय की योग्यता होती है तो सहज रूप से निमित्त होता ही है। जब उपादान की तैयारी होती है अर्थात पर्याय की पात्रता पक्की है, तब सत्पुरुष का समागम भी सहज ही प्राप्त होता है। सत्पुरुष की खोज भी सहज ही सफल होती है। कुछ भी असहज नहीं होता, सब कुछ सहज ही होता है। त्रिकाली सत की रुचि में सत्पुरुष की खोज की प्रक्रिया सहज ही संपन्न होती है। व्यग्रता से कुछ नहीं होता। आत्महित का मार्ग तो सहज का धंधा है। सत्पुरुष की शोध भी सहज और त्रिकाली ध्रुव की अनुभूति प्रतीति भी सहज। ये प्रतीति भी सहज है। अभी हमको नया अनुभव हो रहा है, कैसा उपयोग अंदर ले जाना, कैसा ले जाना, ये कुछ नहीं, वहाँ विचार करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे सत्पुरुष भी सहज मिलते हैं, जैसा उनका उपदेश भी सहज प्राप्त हुआ हमें, वैसे त्रिकाली का स्वरूप ख्याल आने पर उसके बारे में वो विचार करते करते वो उपयोग भी उसको पकड़ लेता है। आत्मा तो स्वयं ज्ञायक है ना, तो उसको ही समझाना है कैसे करो कैसे करो, तो अपना ज्ञान भी वो सहजता से कर लेगा। कुछ भी असहज नहीं होता, सब कुछ सहज ही होता है। त्रिकाली सत की रुचि में सत्पुरुष की खोज की प्रक्रिया सहज ही संपन्न होती है। व्यग्रता से कुछ नहीं होता। आत्महित का मार्ग तो सहज का धंधा है। सत्पुरुष की शोध भी सहज और त्रिकाली ध्रुव की अनुभूति प्रतीति भी सहज, सब कुछ सहज ही सहज है। ये तो हुआ था। जब संसार सागर का किनारा निकट आ जाता है, तब सहज ही आत्मा की रुचि जागृत होती है। आत्मरुचि भगवान आत्मा और आत्मज्ञ सत्पुरुष की शोध की ओर पुरुषार्थ को प्रेरित करती है। सत्पुरुष के समागम से आत्मरुचि को अभूतपूर्व बल प्राप्त होता है। अध्ययन मनन चिंतन की प्रक्रिया पर से विमुख हो उन्मुख हो जाती है। यानी जो अध्ययन मनन और चिंतन पर की ओर का था, शास्त्र की ओर का था, वो वहां से हटकर स्व की ओर भी सहज हो जाता है। शुरू में तो ऐसे होगा, शास्त्र का अध्ययन, शास्त्र का मनन, शास्त्र का चिंतन वो शब्दों में होगा, परंतु जैसे जैसे वो आत्मा की रुचि बढ़ेगी, वो अध्ययन मनन चिंतन अपनी ओर हो जाएगा, उसका स्वसन्मुख हो जाएगा। रुचि की तीव्रता और पुरुषार्थ की प्रबलता दोनों दिए हैं, रुचि की तीव्रता और प्रबल पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की प्रबलता दृष्टि को स्वभाव सम्मुख तो करती ही है। जो दृष्टि को स्वभाव सम्मुख करे वही तो पुरुषार्थ है, उसी को हम पुरुषार्थ करते कहते हैं। हम कहते हैं कैसे हो जाएगा, कैसे होगा पुरुषार्थ, क्या करना, तो दृष्टि स्वभाव सम्मुख होना यही पुरुषार्थ है, और उसमें साथ साथ रुचि भी है, तो ये रुचि पुरुषार्थ सारा ही काम कर देती है। ज्ञान व ध्यान पर्याय को भी आत्मोन्मुख करती है, और यह निमित्त उपादान का सहज सुमेल देशना लब्धि से करण लब्धि की ओर ढलता हुआ, यानी अभी पहले तो देशना मिली, फिर बार बार उस पर विचार करने की जो प्रक्रिया प्रायोग्य लब्धि, और फिर करण लब्धि आत्मसन्मुख परिणाम, सम्यक दर्शन पर्याय प्राप्त करने की सशक्त भूमिका तैयार कर देता है। यानी वह निमित्त उपादान दोनों को लिया, दोनों का ही सुमेल होता है, यह सब कुछ सहज ही होता है, इसीलिए कहा गया है कि आत्मार्थी को निमित्तों की खोज में व्यग्र नहीं होना चाहिए। खोज तो होती है प्राथमिक भूमिका में, वो अब तक हमको मार्ग नहीं मिला, अब यहाँ सच्चा मार्ग सुनने को मिल रहा है, ऐसे अंदर से अपने को खात्री हो जाती है। सूक्ष्म और विशुद्ध लब्धि धारक पुरुष को, सूक्ष्म लब्धि धारक यानी सन्नी पंचेंद्रिय जीव है, तो वो तो हमें कोई प्राप्त करने के लिए जाना नहीं, कहीं मनुष्य है हम, संगी पंचेंद्रिय है, तो इतना तो सूक्ष्म हमारे पास है ज्ञान का कि स्वयं समय दर्शन प्राप्त करे, उसको कहते हैं सूक्ष्म लब्धि। और विशुद्ध लब्धि यानी दुनियादारी की रुचि छोड़कर अब कुछ परिणाम मंद हो गए, कषायों की मंदता हुई है, अकेले मंदता नहीं, अभी ऊपर की ओर जाने वाले ऐसी ऊर्ध्वता भी है उसमें, तो ऐसे उसको कहते हैं विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि हो रही ना, परिणामों में निर्मलता निर्मलता हो रही है, कि आत्मा की बात सुनू ऐसी रुचि जागृत हुई है, ऐसे धारक पुरुष को सन्मार्ग की प्राप्ति का विकल्प तो होता ही है, तदर्थ शोध खोज का होना भी स्वाभाविक ही है। इसी प्रक्रिया में सत्पुरुष की शोध खोज भी होती है, काल लब्धि के अनुसार उपलब्धि भी होती है, अंदर भावना बनी रहेगी तो सहज ही ऐसा कोई बताने वाला मिलता है, अरे चलो वहां जाएंगे, वहां ऐसा ऐसा मिलता है, ये तो सहज है, उसको किसने ढूंढा था जिसने ये मार्ग बताया, तो ऐसे सहज सहज हो जाता है सर। सदगुरु की उपलब्धि और उसके उपदेश की प्राप्ति के उपरांत भी, यानी अभी सदगुरु तो मिल गया, उपदेश भी मिल गया, फिर भी जब तक करण लब्धि के परिणामों की पात्रता नहीं पकती, तब तक अध्ययन मनन चिंतन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अरे हमको नहीं प्राप्त हुआ, चलो छोड़ देगा, ऐसा नहीं, वो अध्ययन चिंतन मनन तो चलता ही रहेगा, कब तक, वो पर्याय की जब पात्रता पकेगी समय दर्शन की, तब वो पर्याय भी प्रकट होगी, और उसके पूर्व में ये अध्ययन चिंतन मनन भी उसका चलता रहेगा। यह काल अंतर्मूर्त भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है, किसी जीव को अंतर्मूर्त में वो सारा हो जाता है, और किसी को ज्यादा काल लगे, उसमें कोई डरने की बात नहीं, पर यह सब कुछ बिना तनाव के अत्यंत सहज भाव से चलता रहता है। सहज भाव का ऐसा अर्थ नहीं है चलो होने वाला है तब होगा, चलो अभी जाके दुकान में बैठेंगे, क्योंकि जब होगा वो सहज ही होगा, ये इसको सहजता नहीं कहते, होता तो स्वसन्मुख परिणाम से ही होता है, होता तो वो बहुत तीव्र उसकी लगनी लग जाए, वो बार बार चिंतन का विषय बन जाएगा, मनन भी उसके बारे में चलता रहेगा, पर जब होता है तो सहज होता है, परंतु सहज का नाम सुनकर चलो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं ना, सारा सहज ही सहज है, चलो जाके अभी तो थोड़ा टीवी देखेंगे, फिर दुकान में बैठेंगे, तो पिकनिक मनाएंगे, ये सहज इसको नहीं कहते, डिफरेंस ख्याल में आता है। यह सब कुछ बिना तनाव के, वो तनाव का वहां निषेध किया, टेंशन लेने का निषेध किया, बाकी जो होता है नहीं, वो सहज हो जाता है, अध्ययन करने वाले को, चिंतन मनन करने वाले को समय दर्शन सहज होता है, वो उसके लिए टेंशन नहीं लेना इतना, इसके लिए वो सहज की बात है। सहज का अर्थ ऐसा नहीं वो कुछ करना ही मत, अपने आप सहज होगा, उसको सहज नहीं कहते। यह सब कुछ बिना तनाव के अत्यंत सहज भाव से चलता रहता है, और सहज भाव से ही चलते रहना चाहिए, यानी जो अध्ययन चिंतन मनन करता है उसके लिए ऐसी आकुलता करने की जरूरत नहीं है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, मुझे क्यों नहीं रहा है, उसको बार बार लक्ष्य कहाँ है। पर्याय अभी हुई कि नहीं, अभी हुई कि नहीं, अरे त्रिकाली सिद्धांत था प्रश्न। हाँ भूल भी पर्याय नहीं दी है, परंतु वो और स्वभाव सम्मुख दृष्टि कौन करेगी है? शुद्धात्मा का लक्ष्य करने वाली कौन है? वो भी पर्याय है ना, शुद्धात्मा का लक्ष्य करना ये भी कार्य हुआ ना, वो भी पर्याय नहीं, भूल पर्याय नहीं थी, पर्याय नहीं सुधर जाएगी। क्योंकि त्रिकाली रूप से तो देखो तो हम तो शुद्ध है, वितराग सर्वज्ञ स्वरूप ही है, तो भूल पर्याय में, परंतु हमने आज तक पर्याय मात्र अपने को माना था, सर्वथा हम मिथ्या दृष्टि है इतने ही हमें ऐसा माना था। तो वो पर्याय के साथ पूरा त्रिकाली भगवान है ना वहाँ, उसकी दृष्टि करनी है। हाँ उसको भी नहीं सुधारना, देखो कोई व्यक्ति ऐसा नीचे झुककर कुछ सीधा कर रहा था रास्ते पर, दोपहर को 12 बजे समझो 2 बजे कुछ सीधा कर रहा था, उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, तो हमारी परछाई जो है ना छाव उसको सीधा कर रहे, तो वो कब सीधी होगी? तो उसको कहते तू सीधा खड़ा हो जा, तेरी छाव भी सीधी हो जाए, है ना। तो वैसे ही पर्याय को सीधा करने से पर्याय सुलट नहीं जाएगा, क्या करना पड़ेगा? तू जो सीधा है उसकी दृष्टि कर, मैं तो सीधा हूँ, मैं तो त्रिकाली शुद्ध ही हूँ, मैं तो वितराग सर्वज्ञ स्वरूप हूँ, ऐसा जब पर्याय नहीं है सारा चलेगा, कार्य तो पर्याय नहीं होता, मैं तो अनादि से त्रिकाली शुद्ध हूँ ना, तो क्यों नहीं हुआ? तो जो पर्याय अपने को पर्याय रूप मान रही है उसी पर्याय को अपने को वो ध्रुव में अभेद करके अपने को समझना है। उसने अपने को इतना ही माना था, अभी मैं तो पूर्ण स्वरूप जो द्रव्य है, पर्याय और द्रव्य तो अभिन्न है, हमें समझने के लिए शास्त्रों में उसको भेद कर करके समझाया। अब ये जो पर्याय में कार्य 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 है, यानी वो पर्याय 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 पर्याय, तभी क्या पर्याय पर्याय क्या समझेगी? मैं तो त्रिकाली शुद्धात्मा हूँ, ऐसे जिसने अपने को स्वीकार किया वो पर्याय भी शुद्ध ही हो गई ना। पहले पर्याय क्या मानती थी? मैं पर्याय जितना ही हूँ, पूरे द्रव्य को उसने राग द्वेष जितना ही माना था, एक समय की पर्याय जितना माना था। अब वही पर्याय क्या मानती? मैं तो त्रिकाली हूँ, है ना। तो जैसा अपना स्वभाव है पूरा त्रिकाली स्वभाव, क्योंकि पर्याय भी है उसी समय, परंतु उसका लक्ष्य नहीं करना, उसको गौण करके त्रिकाली को मुख्य करना है, क्योंकि एक समय में दोनों ही रहेगी, पर्याय भी रहेगी, द्रव्य भी पूरा रहेगा, त्रिकाली भी स्वरूप रहेगा, उस समय वो परिणमन करने वाली पर्याय भी रहेगी, परंतु लक्ष्य हमको त्रिकाली का करना है, उसको मुख्य करना है, और पर्याय में जो राग द्वेष बाकी है उसको गौण करना है, वो हट नहीं गए। जब आत्मानुभव करना है तो त्रिकाली को मुख्य करना है, बाकी जो लौकिक व्यवहार में तो सारा ही मुख्य गुण सारा चलता रहेगा। ओके 24 घंटे तो त्रिकाली भगवान नहीं रहेगा, रहे तो अच्छा ही है ना, चलो यहाँ उसको स्थान ही नहीं, सिद्धालय में जाना पड़ेगा, क्यों? अच्छा ही है ना। नहीं जाने का जल्दी नहीं, लोगों का क्या होगा, हमारे बाल बच्चों का और हमारे शिष्यों का क्या होगा, उनको कौन समझाएगा? ये ऐसी निमित्तपना की बुद्धि नहीं रहती है आत्मज्ञानी को, ऐसा नहीं अरे मैं चला जाऊंगा जल्दी मुनि हो जाऊंगा या मैं सिद्ध हो जाऊंगा, मेरे शिष्यों को कौन संभालेगा, उनको निमित्त कौन बनेगा, ये निमित्त होने की बुद्धि नहीं रहती वहाँ। हाँ जब संसार का किनारा वो भी बड़ा था तेरे, अच्छा हाँ विव्रता का बराबर। 13वां प्रश्न, जब कार्य की उत्पत्ति में 5 समवायों का सहज सुमेल होता है, ये 5 समवाय तो पहले इसमें हमने देखे थे, एक क्रमबद्ध आप नहीं थे, 5 समवाय ने हमने उस दिन चर्चा की थी, स्वभाव यानी जब जब कार्य होता है तब ये पांचों ही कारण आ मिलते हैं, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार कहो या भवितव्य कहो और निमित्त, ये सारे ही उपादान है और ये निमित्त एक करते हैं। तो जब कार्य की उत्पत्ति में पंच समवायों का सहज सुमेल होता है, वहां भी हमने देखा था निमित्त भी सहज होता है, वो सारा ही सहज होता है, कर्मबद्ध पर्याय की अपेक्षा से सारा ही सुनिश्चित होता है अपने अपने समय पर, निमित्त उपादान का भी सहज सुमेल होता है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ो, त्रिकाली उपादान रूप निज भगवान आत्मा का आश्रय लो। प्रश्नकर्ता का यह प्रश्न है, जब ये सारा आश्रय लेना भी सहज होगा, बाकी उसको निमित्त भी सहज मिलेगा, तो इसका उपदेश क्यों दे रहे हैं? प्रश्नकर्ता का प्रश्न क्या है, ये सहज होने वाला है तो ये करो करो की भाषा क्यों, उसका उपदेश क्यों दे रहे हैं? उत्तर, निमित्त पर है, उस पर दृष्टि रखने से दृष्टि पराधीन होती है, पर द्रव्य है ना, तो उस पर दृष्टि रखना यानी उसकी ओर कुछ आशा से देखते रहना, ये मेरा कुछ कार्य कर दे, ये कुछ मेरा कार्य कर दे, तो हमारी दृष्टि पर की ओर ही रहती है। त्रिकाली उपादान रूप निज भगवान आत्मा स्व है, उस पर दृष्टि रखने से दृष्टि स्वाधीन होती है, पराधीनता ही दुख है और स्वाधीनता ही सुख है। जब कोई अन्य पैसे दे दे तो मेरा संसार चलेगा, इसे जब जीव सोचता है तो उसकी दृष्टि कहाँ रहेगी, अरे वो मुझे दे दे, वो देता है तो और ज्यादा दे दे, यानी वो पराधीन है, परावलंबी हो गए ना, तो उसमें दुख है उसको, और स्वाधीनता में सुख है। अतः सुखार्थी को तो स्वाधीनता ही श्रेयस्कर है। सुखार्थी यानी सुख की, सुख का अर्थी यानी सुख की इच्छा करने वाला, विद्यार्थी यानी विद्या सीखना चाहता है ना, ग्रहण करने वाला, वो विद्यार्थी, ऐसे सुखार्थी यानी सुख की इच्छा करने वाला, सुख को प्राप्त करने का जो जिसका ध्येय है वो। वस्तुतः बात यह है कि जब करण लब्धि के उपरांत यानी उसके पश्चात सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तब ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र आदि सभी गुणों की परिणति आत्म सन्मुख होती है, अनंत गुणों का ही आत्म सन्मुखता होती है। करण लब्धि के उपरांत, करण लब्धि के अंत समय में सब में दर्शन नहीं होता, उसके बाद था क्या प्रश्न है? करण लब्धि के जब जब समय दर्शन होता है, भाई का प्रश्न है करण लब्धि के बारे में जरा बताना। देखो लब्धि यानी प्राप्ति, तो जीव को समय दर्शन प्राप्त होता है तो उसके पहले क्या क्या बातें होती है, तो अभी हमने सूक्ष्म लब्धि देखी कि जीव का संधि पंचेन्द्रियपना होना आवश्यक, संधि यानी मन उसको होगा तभी वो जो बातें उसको उपदेश ग्रहण कर सकता है, यानी उपदेश ग्रहण करना, उस पर विचार करना, सोचना, ये कौन कर सकता है, मन वाला प्राण, इसलिए संधि पंचेंद्रिय होना आवश्यक है, तो उसको कहते सूक्ष्म लब्धि। विशुद्धि लब्धि यानी ज्ञान तो इतना है, तो देखो कोई किसी खोज में जुटा हुआ है, कोई वो अभी संरक्षण के उसमें जुटा है, और कोई मंत्री अपना पैसा कैसा कमाना उसमें वो ज्ञान लगाए, तो ये ज्ञान कहाँ लगे, तो आत्मा को कैसे प्राप्त करना, इसमें वो सुनने के प्रति उसके भाव जागरूक हुए ना, तो कषायों की विशिष्ट मंदता हुई और आत्मा को जानने की उसमें रुचि प्राप्त हुई, उसको कहते विशुद्धि लगती। उसके बाद तीसरी है देशना लगती, यानी जो आत्मा के बारे में जो उसको उपदेश मिलता है वो उपदेश वो ग्रहण करता है, वो हुई देशना लगती। देशना लगती वो शिष्य की है ना, देशना तो हो सकती है गुरु की, उपदेश अकेले देशना को देशना लब्धि नहीं कहते, वो लब्धि ने प्राप्त किया किसने, जिसने स्वयं वो अपने धारणा में लिया, अपने ज्ञान में उसको नक्की किया, पहले तो सुना उसने, अब सुनने के बाद उस पर बार बार विचार करेगा और ये ऐसा बराबर है कि नहीं है, वो स्वयं निर्णय करेगा, उसको कहते हैं नहीं, वो देशना के बाद प्रायोग्य लब्धि, बार बार वो अपने विचारों में लेगा, हाँ प्रायोग्य लब्धि। और उसके बाद होती है करण लब्धि, यानी बार बार विचार करें, देव गुरु शास्त्र का स्वरूप निश्चित किया, सात तत्वों का स्वरूप निश्चित किया, अपने आत्मा का स्वरूप निश्चित किया, अब आत्मा को भी जानना है तो पर्याय भी है और त्रिकाली भी है, तो त्रिकाली ध्रुव कैसा है, तो उसका स्वरूप निश्चित किया, और फिर आत्मसन्मुख परिणाम ले गए। ले गए नहीं, ये होता सहज है, परंतु अभी समझाने के लिए वो ले गया वगैरह ऐसी बातें थे। ये अंतर बाहर कुछ नहीं है। अपने को पहले तो देह रूप अनुभव करता था, पहले अपने को राग रूप अनुभव करता था, अब अपने को ज्ञान में अनुभव करने लगा। उपयोग अंदर ले गए तो उपयोग को अपने आत्मा को ही जानते रह गए। यानी पहले तो बाह्य अनेक चीजों को जानता था, फिर विचारों में आया तो विचारों को जानने में अटक गया। अभी वो विचार भी मंद होकर छूट गए और फिर उपयोग ने अपने को ही जानना प्रारंभ किया। यानी आत्मा को ही आत्मा ने ही जाना। तो उसको कहते स्वभाव सन्मुख उसका उपयोग है। तो ऐसी जो स्वभाव की ओर उसके परिणाम बढ़ रहे, विशुद्धि यानी उसके परिणाम की निर्मलता बढ़ रही है, तो उसको कहते करण लब्धि। तो करण लब्धि में भी तीन करण होते हैं। अभी उसको अनेक जीवों की अपेक्षा उसके नाम भी अलग अलग है, उसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। तो उसमें कहते अधक करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। अधक करण यानी अनेक जीवों के अलग अलग समयों में, कोई जीव 10 समयों में इतना पुरुषार्थ करे, उतना ही पुरुषार्थ कोई पहले 2-3 समयों में करे, तो इसे उसको कहते अधक करण। फिर परिणाम और उससे निर्मल हो जाते हैं तो वहां कहते हैं उसको अपूर्व करण। पहले कभी नहीं थे ऐसे अपूर्व अपूर्व परिणाम होते जाते। फिर उसके बाद होते हैं अनिवृत्तिकरण, कि अभी इतनी निर्मलता की सारे जीवों के एक एक समय में एक एक समान ऐसे परिणाम होते, अनंत गुणी विशुद्धि होती 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 जाती है। और फिर ये करण लब्धि के परिणाम हो गई अंत समय उसका, और उसका पश्चात वाला समय तब उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। करण लब्धि में मोह भी मंद मंद पड़ता जाता है, मिथ्या को भी बहुत मंद होते जाता है। करण लब्धि के आत्मा को पकड़ लिया, बस समय दर्शन हुआ। पर उसके पहले आत्मा सन्मुख है ना, आत्मा की ओर हो रहे सारे, वो हो गए करण लब्धि के परिणाम। और करण लब्धि के बाद समय दर्शन होता ही है। प्रायोग्य लब्धि तक आकर फिर अभव्य भी प्रायोग्य लब्धि तक आ सकता है। अभव्य जीव कि जिसको तीन काल में कभी समय दर्शन नहीं होगा, वहां तक तो जीव आ सकते हैं। परंतु जो करण लब्धि में प्रवेश करेगा यानी आत्मसन्मुख उपयोग ले जाएगा, उसी को समय दर्शन होगा। तो यहाँ लिखा है कि करण लब्धि के उपरांत यानी उसके पश्चात वाले समय में समय दर्शन की प्राप्ति होती है। यहाँ चल रहा था, यही चल रहा था। तब ज्ञान दर्शन तथा चारित्रादि सभी गुणों की परिणति आत्मसन्मुख होती है। उस समय त्रिकालीन जो भगवान आत्मा ही ज्ञान का ज्ञेय होता है, यानी अनुभूति के समय में किसको जान रहा था, अपने त्रिकाली भगवान आत्मा। श्रद्धान का श्रद्धेय ने अपने को स्व के रूप में किसको स्वीकार किया, त्रिकाली भगवान आत्मा। और ध्यान का ध्येय ने किसका ध्यान कर रहा था, त्रिकाली भगवान आत्मा। जिस प्रकार अनुभूति के काल में सभी गुणों की परिणति आत्मसन्मुख होती है, उसी प्रकार सभी गुणों की परिणति में निर्मलता भी प्रकट होती है। उसमें निर्मलता प्रकट होती है, श्रद्धा में, ज्ञान में, सारे ही गुणों में निर्मलता होती जाती है। इसी कारण कहा जाता है कि सर्व गुणांश समकित। तात्पर्य है कि सम्यक दर्शन आत्मा के संपूर्ण गुणों के अंशों में स्फुरायमान होता है, यानी सभी गुणों के अंशों में स्फुरायमान होता है, यानी सभी गुण आंशिक वो निर्मलता वहां प्राप्त हो जाती है। ऐसा नहीं कि 2-3 गुण ही सुधर गए और बाकी ऐसे ही रहे, इसी नहीं। ज्ञान गुण की परिणति सम्यक ज्ञान रूप हो जाती है, श्रद्धा गुण की परिणति सम्यक दर्शन रूप हो जाती है, चारित्र गुण की परिणति सम्यक चारित्र रूप हो जाती है। आनंद यानी सुख गुण में भी अतीन्द्रिय आनंद उमड़ पड़ता है, वो सुख गुण की भी परिणति वो सुख रूप होती है, आनंद रूप होती है। आखिर अनंत गुणों का अखंड पिंड संपूर्ण आत्मा ही सम्यक दृष्टि होता है ना, यानी आत्मा ही सम्यक दृष्टि होता है ना। तो आत्मा में क्या है, अनंत गुण है, तो अनंत गुणों में भी वो निर्मल परिणमन हुआ पूरा का पूरा, यानी पूरा आत्मा ही सम्यक दृष्टि कहलाया। अभी प्रश्न, यह तो ठीक, पर जिस सत्पुरुष ने हमें सुखी होने का मार्ग बताया, सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय बताया, उसी की यह उपेक्षा तो ठीक नहीं, उसे भी दृष्टि से ओझल कर देना क्या कृतज्ञता नहीं है। क्या कहते, उसका लक्ष्य छोड़कर हमने आत्मा का लक्ष्य कर दिया तो हमने उसको कृतज्ञ हो गए ना, कि उसका लक्ष्य छोड़ दिया। तो बताते नहीं, यह कृतज्ञता नहीं है, कृतज्ञ ये ख्याल पड़ता है दीपाली, कृतघ्न और कृतज्ञ ऐसे दो शब्द है। कृतज्ञ यानी हम उसके प्रति हम थैंक्स कहते ना किसी को, अहो भाव हो जाते हैं, ऑब्लिगेशन हम उसके मानते, तो वो हो गया कृतज्ञ। और कृतघ्न मैंने, कृतघ्न के बाद क्या है उसकी उसका अर्थ क्या है, उपकार को नहीं मानने वाला, यानी जिसका उपकार है अनग्रेटफुल। हाँ, कृतज्ञ यानी ग्रेटफुल और कृतघ्न यानी अनग्रेटफुल। ज्ञ में है कृतज्ञ में ज्ञान का ज्ञ आता है, ये घ्न विघ्न वाला घ्न। हाँ, तो कृतघ्न यानी अनग्रेटफुल। तो कहते हैं कि उनकी उपेक्षा करके यानी उनका उनकी तरफ न देख के अपने त्रिकाली भगवान आत्मा की ओर हम देखेंगे तो हमने उनको अनग्रेटफुल हुए ना हम, नहीं यह कृतज्ञता नहीं है अपितु सच्ची कृतज्ञता है। क्योंकि वह सत्पुरुष भी तो यही चाहता है कि तुम दृष्टि को संपूर्ण जगत से हटाकर स्वभाव से मुक्त करो, उसको दुख नहीं होगा, उसको ऐसा नहीं लगेगा अरे ये तो अपनी ओर देखेगा तो मेरा क्या हुआ, मेरे को कौन मानेगा, मेरी जय जय कौन कहेगा। उसका उद्देश्य ही यही था कि अरे तुम अपनी ओर देख, भगवान भी यही बताते ना, देखो मैं अपनी ओर देख रहा हूँ तो मैं अपनी ओर देखो, और हम बार बार भगवान की ओर देखे जा रहे। उनका उपदेश ही है कि हरेक जीव अपना स्वयं का स्वरूप पहचान कर स्वयं भगवान बने। उनको ऐसा नहीं लगता अरे सभी भगवान बन जाएंगे तो मेरी स्थिति कौन करेगा, लगता है क्या? तो ज्ञानी भी ऐसा नहीं सोचता कभी, अरे सब अपने अपनी दृष्टि करे तो सब समय दृष्टि हो जाएंगे तो मेरे कौन पूछेगा मेरे को, ऐसा ज्ञानी को कभी नहीं होता। सब कुछ यही जाता है। अतः यह तो उसी की आज्ञा का पालन हुआ। तुम्ही बताओ कि गुरु जी का आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य कृतज्ञ होता है या कृतज्ञ? गुरु द्रोणाचार्य जब अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे तब वृक्ष की टहनी पर स्थित कृत्रिम चिड़िया की आंख को भेदन करने का आदेश देते हुए, आदेश यानी उन्हें हुक्म दिया ना, उन्हें ऑर्डर दी कि उसकी वो आंख भेदन करो, उन्होंने अपने सभी शिष्यों से यही एक सवाल किया था कि तुम्हें क्या दिख रहा है, अर्थात तुम्हारी दृष्टि में क्या है। जिन लोगों ने यह उत्तर दिया कि हमें सब दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष, डाली, चिड़िया, उसकी आंख और गुरुजी आप भी, गुरुजी ने उन सभी को बिना बाण चलाए ही नापास कर दिया। और अर्जुन के कहने पर कि सिर्फ चिड़िया की आंख और कुछ नहीं, गुरुजी ने फिर पूछा मैं भी नहीं, हाँ आप भी नहीं। अर्जुन के इतना कहते ही गुरुजी ने कहा छोड़ो बात, वो एकमात्र लक्ष्य दिख रहा था उसको, बताने वाले गुरु सिखाने वाले कुछ कोई कुछ नहीं दिख रहा था, बाण छूटा जाकर अपने सही निशाने पर लगा। गुरुजी उसी अर्जुन से प्रसन्न हुए जिसने दृढ़ता पूर्वक कह दिया कि आप भी नहीं दिखते, न केवल कहा अभी तो सचमुच ही उसने दृष्टि के विषय में से उस समय गुरुजी को भी पृथक कर ही लिया था, उस समय की बात है। और गुरुजी को भी जब तक दृष्टि में रखेगा तब तक वो अपने निशाने पर उसका बाण नहीं रहेगा। लक्ष्य भेद का यही एक उपाय है। अर्जुन का कृत्य गुरु की उपेक्षा नहीं सर्वाधिक सम्मान था, क्योंकि उसने सच्चे अर्थों में गुरुजी की आज्ञा का पालन किया था। ये तो आसान है, इसमें समझाने की कोई बात है। जब लौकिक कार्य की सिद्धि में भी लक्ष्य भेद में भी, लक्ष्य भेद यानी वो निशाना करना, कहते लक्ष्य भेद यानी जहाँ वो बाण मारना है ना उसी पॉइंट पर लगाना, उसको कहते लक्ष्य भेद। लक्ष्य भेद में भी गुरु को दृष्टि में से निकालना अनिवार्य हो जाता है तो फिर आत्म सिद्धि जैसे महान कार्य में गुरुदेव को दृष्टि के विषय में कैसे रखा जा सकता है? इसको अरे गुरुदेव की अवहेलना करे, अरे ऐसा नहीं है, गुरुदेव ने यही बताया है कि तुम अपनी आत्मा की दृष्टि करो, तो जैसा उन्होंने बताया वैसा करना उनका सम्मान है, कि उनकी ओर देखते रहना उनका सम्मान है, कि उनकी जय जयकार बोलना उनका सम्मान है, तो हम स्वयं समय दर्शन प्राप्त करना यही उनका सबसे सर्वोत्कृष्ट सम्मान। गुरुदेव के मार्ग, गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलकर उस लक्ष्य की प्राप्ति करना कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गुरुदेव ने निर्देश दिया है, मार्ग बताया है, सदगुरु का सच्चा सम्मान है। इसमें उनकी उपेक्षा तो रंच मात्र ही नहीं है। कोई गुरु नहीं चाहता कि उसका शिष्य निरंतर उसका ही मुंह ताकता रहे या उसकी ही स्तुति गान में लगा रहे। और जिस भगवान आत्मा का स्वरूप उसे समझाया गया है उसकी आराधना में तत्पर ही न हो। कोई गुरु भी यह नहीं चाहता कि ये 24 घंटा मुझे ही सुनता रहे। समझाते भी है, ये कितना सुनोगे अब तो अपनी ओर दृष्टि कर दो, ये सुनने से कुछ कल्याण नहीं होने वाला। पहले तो कहते हैं अरे सुन तो सही, बाकी दुनियादारी छोड़कर यहाँ आ तो सही। जब आने लगा, उसने सच्चा ग्रहण किया, तब क्या कहते हैं अब कितना सुनोगे, अपनी ओर भी देखोगे कि नहीं देखोगे। सुनने के पहले नहीं कहा था, क्योंकि तब तो मालूम नहीं था किसकी ओर देखना क्या करना। अपनी ओर देखो कहेगा तो यह कि संभाल में लग जाएगा, क्योंकि उसको मैं कौन पता ही नहीं था। अब उसको ख्याल में आया कि शिष्य अभी तैयार हुआ है, उसने सच बराबर पकड़ लिया है, तो कहते अभी अपनी भी दृष्टि करो, ये शास्त्र को ही कितने दिन सुनोगे। सच्चे शिष्य के हृदय में भी गुरु का समुचित स्थान और सम्मान तो सदा रहता ही है, और समय समय पर वह अभिव्यक्त भी होता रहता है। अभिव्यक्त होना यानी उसको जाहिर करना, उसको बताना, एक्सप्रेस करना। पर अनुभव के काल में तो, किस काल की बात है, अनुभव के काल में तो वे ज्ञान के भी गेय नहीं रहते। अनुभव के ज्ञान तो अपने शुद्धात्मा को ही गेय बनाएगा, यह भी परम सत्य है। इस बात को भी हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। लक्ष्य भेद के लिए सन्नद्ध होने के पूर्व, सन्नद्ध रेडी होने के पहले पूर्व भी वह गुरु का स्मरण करता है, कर सकता है, करता है। लक्ष्य भेद के बाद भी कर सकता है, करता है, पर लक्ष्य भेद के काल में कदापि नहीं। इसी प्रकार आत्मानुभूति के लिए सन्नद्ध होने के पूर्व एवं आत्मानुभूति के बाद शुभोपयोग में आने पर गुरु का स्मरण संभव है, पर आत्मानुभूति के काल में तो कदापि नहीं। पंच परमेश्वरी का स्मरण होगा आत्मानुभूति के पहले भी, बाद में भी, या जो जिस गुरु से डायरेक्ट उसको ये उपदेश मिला उनका भी स्मरण हो सकता है मन में, क्या ये बात इन गुरुदेव ने मुझे समझाया। परंतु जब तक वो गुरुदेव उपयोग में है तब तक वो आत्मसन्मुख नहीं है। आत्मसन्मुख उपयोग के समय में बाकी पूरी दुनिया भूल जाता है। ज्ञानी के ज्ञान से सूझे लो तो वाणी मस्तक नमो सदा देखो।